ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप नागपुर से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1972 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और तब से यह जुनून दिलो दिमाग में सवार है कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। इसलिए ज्ञान की गहराई में भी खूब उतरे और खूब योग के एक्सपेरिमेंट किए। 1976 में मधुबन आकर अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। संसार में सबसे अधिक महत्व प्रसाद का है। प्रसाद का अर्थ ही है प्रभु से जोड़ने वाला। और जब प्रसाद हर अक्षर को देखा जाए तो प्र का अर्थ होता है प्रभु, सा का होता है साक्षात और द का अर्थ होता है दर्शन। प्रभु के दर्शन हो जाते इसलिए दुनिया में उसे माथे को लगाकर स्वीकार किया करते हैं। तो कितनी ना आत्माओं को प्रभु से जोड़ने का काम आपने किया है। आपके कई जन्मों के तप और पुण्य जमा किए हैं जो आप भगवान के यज्ञ में टोली किचन संभालते हैं। आप हेडक्वार्टर के तीनों कॉम्प्लेक्स शांतिवन ज्ञान सरोवर मधुबन में जो टोली किचन है वो आपके निर्देशन से चलते हैं। इतना ही नहीं लेकिन बाबा की बोली को भी बहुत सुंदर तरीके से सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखते हैं जैसे हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आपने अपना ऑक्यूपेशन बनाया है विश्व को परिवर्तन करने का, इसलिए 90 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है और ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने में भी बहुत कॉपरेट करते हैं। आपने अनेक आर्टिकल्स लिखे हैं जो पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आपके इंटरव्यूज रेडियो में आते रहते हैं और आपके लेक्चर्स टीवी में भी प्रसारित होते हैं। आप युवा प्रभाग हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो ऐसे प्रतिभावान विभूति हमारे मध्य है। हम सुनेंगे भ्राता जी से फरिश्ता स्वरूप स्थिति के विषय पर। भ्राता जी
ओम शांति। फरिश्ता स्थिति का अनुभव फरिश्ता जो शब्द हैं उसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। फरिश्ता, फरिश्ता ये जो शब्द हैं पांच शब्दों से बना हुआ है। फरिश्ता, फरिश्ता उसकी पांच विशेषताएं होती हैं। फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे अर्शवासी बनकर रहता है। फरिश्ता जिसका कोई फर्शवासियों से रिश्ता नहीं होता है, सारे रिश्ते उसके अर्शवासी भगवान के साथ होते हैं। र अर्थात वो बहुत रियल और रॉयल होता है। रियलिटी सत्यता की शक्ति और रॉयल्टी उसमें स्पष्ट झलकती है। सत्य स्वरूप में टिकता है, सत्यता को लेकर चलता है और सतयोगी दुनिया लाने की सेवा में सदा मददगार रहता है। पर ई अर्थात ईमानदार, दुनिया में किसी को अगर कोई धोखा देता है तो कहता है ये बेईमानी है, ये ठगी करता है। तेसे स्वयं को शरीर समझना आत्मा के बजाय ये स्वयं को ठगना है। तो स्वयं से ईमानदार, परिवार से ईमानदार और यज्ञ से ईमानदार, उसको कहते हैं ईमानदार। फॉर ईश अर्थात शक्तियों के खजाने से सदा भरपूर रहने वाला, क्योंकि आगे चलकर लोग शांति और शक्ति ही चाहेंगे। इसलिए फरिश्ते के पास शक्तियों का स्टॉक भरपूर होता है। और तो अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, सेवा पर रहने वाला। ता अर्थात अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया तारने वाला, पार लगाने वाला। तीन से उसमें पांच विशेषताएं होती हैं। तो जितनी जितनी ये पांच विशेषताएं बढ़ती जाती हैं, उतनी उतनी हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। तीसरी श्रेष्ठ स्थिति पाने के लिए हमें कौन से पुरुषार्थ के ठोस कदम उठाने होंगे, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। फरिश्ता हमारा लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना और फरिश्ता सो देवता बनना। जब तक फरिश्ता नहीं बन सकते हैं तब तक देवता नहीं बनते हैं। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें पांच बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। सबसे पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए फरिश्तों की दुनिया हमारे सामने सदा स्पष्ट होना जरूरी है। न केवल स्पष्ट हो लेकिन फरिश्तों की दुनिया में हमें सदा रहना है, विचरण करना है और उसको यूज करना है। मैंने 89 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था यहां मधुबन में। दादी जी से पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, तो दादी जी ने बताया था कि ये जो पांच तत्वों की दुनिया है, उस दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश सदा रहता है। स्नो व्हाइट ब्राइट डिवाइन लाइट सदा रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन आसमान में एक पूर्ण चंद्रमा होता है, सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश जैसे कि उस दुनिया में सदा छाया रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नयनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। जब संदेशी बहन बाबा के पास जाती हैं, तो बाबा के साथ कैसे बातें करती हैं, नैनों के इशारे से और होठों के मूवमेंट्स के माध्यम से बाबा के साथ बातें करती हैं। वहां के कारोबार कैसी चलती हैं, संकल्प शक्ति के आधार पर वहां के कारोबार चलती हैं। बाबा को कोई भी दर्श इमर्ज करना होता है, संदेशी बहन को दिखाना होता है, तो बाबा एक सेकंड में संकल्प शक्ति के द्वारा उसको इमर्ज करते हैं और जो संदेशी बहन है उसके पास मैसेज हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भेजते हैं। मजे की बात यह है, फरिश्तों की दुनिया में जब से हमारा अलौकिक जन्म होता है, जिस भी बच्चे का अलौकिक जन्म होता है, उस दिन से उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप फरिश्तों की दुनिया में सदा बाबा के पास इमर्ज रहता है। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा बाबा यहां साकार में मधुबन में थे, उन दिनों की बात है, एक दिन संदेशी बहन वतन में गई तो उसको लाइट का ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, तो वो सोचने लगी बाबा तो इस मधुबन में है, ये कहां से दूसरा ब्रह्मा बाबा आ गया। तो नीचे आकर ब्रह्मा बाबा को बताने लगी, बाबा ने उसको दोबारा भेजा, तीसरी बार भेजा, तो उसका कोई राज स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ। तो शिव बाबा ने बताया कि ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा हैं और वो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा हैं। तो जब पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते 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 संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंचे, उसके बाद वहां अभी संपूर्ण ब्रह्मा बाबा सदा रहते हैं। तो ऐसे हर एक बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वहां सदा रहता है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, निरंतर जलती रहे। माया उसको बुझाने का प्रयास करेगी, हमें उसको जगाकर रखने का पुरुषार्थ करना है। तो जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होगा और निरंतर लंबे समय तक इस हाउस में, इस मकान में आत्मा की लाइट जलती रहेगी, तो ये हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होगा। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करना। तो इसलिए हमेशा हमें अभ्यास करना है आत्मा की लाइट इस देह रूपी मकान में सदा निरंतर जलती रहे। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां से भी विचरण करते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहती थी। प्रकाश मणि दादी एक बार अनुभव सुना रही थी, ब्रह्मा बाबा मुझे अपने हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सैर करा रहे थे, तो बाबा का हाथ जैसे कि लाइट का हाथ लग रहा था, रुई का हाथ लग रहा था, स्थूल हाथ मुझे नहीं लगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपने शरीर रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहे, उस पर विशेष अटेंशन देते रहे। इसलिए हमें भी आत्मा का दीपक निरंतर इस देह रूपी मंदिर में जलता रहे, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उसमें ज्ञान का घृत या अटेंशन का घृत डालते रहे और आत्मा की ज्योत न केवल निरंतर जलती रहे, लेकिन और उसकी ज्योत प्रखर होती रहे। ऐसी अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए सदा डबल लाइट की स्थिति हमें अनुभव करना है। हल्की कोई भी वस्तु होती है वो ऊपर की ओर सतही जाती है। बलून अगर हम छोड़ते हैं तो सतही ऊपर जाता है। तो जब हमारी डबल लाइट स्थिति होती है तो हम सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो डबल लाइट अर्थात एक तो आत्मा की लाइट और दूसरी लाइट अर्थात हल्कापन सदा अनुभव हो। अभी हम देखते हैं सेवा में सदा बहुत बिजी रहते हैं। बाबा कहते जितने बिजी उतने इजी आपको रहने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन इस कंप्यूटर एज में सबके दिमाग में एक ही बात होती है, मैं बहुत बिजी हूं भाई, बहुत बिजी हूं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बिजी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने सबसे जास्ती बिजी रहकर सदा इजी रहकर कर्म योगी के नंबर वन सैंपल बनकर दिखाया। तो ब्रह्मा बाप समान हमें भी सदा लाइट स्थिति की अनुभूति करना है। उसके लिए कुछ एक युक्तियों को हमें अपनाना है। पहली युक्ति, कर्म करते समय सदा लाइट रखने के लिए पहली युक्ति है, हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है, लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का बोझ हमें ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करना है। हम बाबा को बोझ तो दे देते हैं लेकिन वो बोझ पुनः वापस ले लेते हैं। क्या होता है, जब हम कर्म क्षेत्र में होते हैं तो हमें थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं बाबा मुझे इस कार्य में मदद करेंगे या नहीं। वो संशय होने के कारण जिम्मेदारी का बोझ हम पुनः वापस ले लेते हैं और स्वयं को बोझिल अनुभव करते हैं। इसलिए हमें बोझ जिम्मेदारी का बाबा को देना है और स्वयं को सदा हल्के अनुभव करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना है, लिखो, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। कुली जो है हमेशा सिर पर बोझ ढोता रहता है। अगर बोझ ढोने को नहीं मिलता है तो घर में वो बैठता है, कहते हैं बदन में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, क्योंकि उसका आदत से वो लाचार होता है। तो हम रॉयल बच्चे हैं, रॉयल बच्चे हमेशा लाइट रहते हैं। तीसरी युक्ति है, नथिंग न्यू का पार्ट हमें सदा प्रैक्टिकल में लाना है। जो भी दर्श हमारे सामने आता है, चाहे वो दर्श पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी दर्श हमारे सामने आता है, हमें नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है। केवल और केवल ये रिपीटेशन है। नथिंग न्यू समझते हैं तो सदा हल्के रहते हैं। कोई नई बात अगर होती है तो हम स्वयं को बोझिल अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो भी दर्श आता है, चाहे अच्छा है न चाहे नहीं अच्छा है, वो हमारे कर्मों का फल है और वो हमारे सामने से गुजरता है। चौथी युक्ति, कर्म क्षेत्र पर हमेशा लाइट के शरीरधारी हमें अनुभव करना है। स्थूल शरीरधारी अनुभव करते हैं तो शरीर तो एक स्थूल मशीनरी है, थोड़े समय के बाद वो जरूर थक जाती है। लेकिन लाइट के शरीरधारी समझते हैं तो लाइट कभी थकती नहीं है। इसलिए अथक बनकर हम सेवा पर उपस्थित रह सकते हैं और स्वयं को हल्के भी अनुभव कर सकते हैं। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी मौज आत्मा को न बांधे। फरिश्ता अर्थात आजाद पंछी उड़ता पंछी अनुभव करने वाला, आजाद पंछी अर्थात आ जा दी। जब मैं आत्मा पंछी इस पिंजड़े में आऊं तो आ जाएं, उड़ जाऊं तो उड़ जाए, वतन में बैठ जाएं, ऐसी स्थिति को कहेंगे आ जा दी। तो हमें माया की गुलामी नहीं चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी और माया की गुलामी हमने बहुत सहन कर ली। अभी संगम युग में बाबा ने हमें आजाद पंछी बना दिया है। पिंजड़े का पंछी हमेशा बंधन में बंधा रहता है। तो दो प्रकार के बंधन हमें सारे दिन भर में बांधने का प्रयास करते हैं। कौन से दो बंधन हैं? व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना, दूसरा है वस्तु के तरफ आकर्षण होना। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे बांध नहीं सकती है। अगर व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता भी है तो वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है और वहां से बुद्धि को फ्री रखना है। क्योंकि हमारा 84 जन्मों का अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट बना हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए ही बाबा हमें हर रोज ज्ञान और योग की पालना देते हैं। उस पालना का भरपूर लाभ लेकर हमें इन बंधनों को, हिसाब किताब को खत्म करना है। तो व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता भी है तो वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। वस्तु के तरफ आकर्षण होता है तो बाबा कहते हैं ये सारी चीजें विनाशी चीजें हैं, कितनी भी अच्छी चीज हो लेकिन वो सतयुग में नहीं जाती है। यहाँ का सोना ये अशुद्ध 5 तत्वों से बना हुआ और सतयुग का सोना बहुत अंतर होगा। इसलिए ये अल्पकाल की वस्तु है, विनाशी वस्तु है, इससे क्या मोह लगाना, ऐसा समझकर वस्तु से भी हमें डिटैच रहना है। तो दोनों प्रकार की रस्सियों से हमें स्वतंत्र अनुभव करना है। बहुत अच्छी तरह से चेक करते जाना है, सृष्टि के ग्लोब पर खड़े रहना है और सूक्ष्म रूप से चेक करना है। कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। अगर जाती भी है तो वहां से उसको हटाना है और बाबा के तरफ जुटाना है। ये पुरुषार्थ हम आंतरिक रीति से करते रहे तो धीरे धीरे फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। क्योंकि कोई भी बंधन आत्मा को न बांधे तभी हम सदा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। यहां तक कि अपने देह का भान रूपी बंधन भी हमें न बांधे, संपूर्ण फरिश्ता अर्थात मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। ये स्थूल 5 तत्वों से बनी हुई ड्रेस का भान भूलते जाएं और दिव्य प्रकाश पुंज के शरीर का जो भान है वो बढ़ाते जाएं, तो फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। 18 जनवरी के दिन अगर आप मधुबन में आएंगे तो ऐसा लगता है मधुबन मधुबन नहीं है, ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया इस धरती पर उतर चुकी है। सभी बाबा के बच्चे मौन व्रत धारण करते हैं और बाबा के प्यार में डूबे रहते हैं, चारों धाम की यात्रा करते रहते हैं। ऐसा लगता है चलते फिरते फरिश्ते ही इस भूमि पर, इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर अनुभव 18 जनवरी के दिन में हमें होता है। पांचवी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है और ऐसा अनुभव करना है मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे सेखेन करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, जब मेरे समान बन जाओगे तभी मैं आपको सेखेन करूंगा। मेरा ही फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है। अगर पांडव भवन के गेट पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपको मैसेज मिलता है, यहाँ आप चैन से नहीं बैठ सकते, बार बार संकल्प आएगा मुझे वहां जाना है, तो ऐसे अपना फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, ऐसी अनुभूति करेंगे तो उसके समान बनने के लिए पूरा प्रयास आप करते जाएंगे। तो वो फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार इसी स्थूल शरीर जैसा ही है, अंतर इतना ही है, ये हड्डी मांस का शरीर है, ये दिव्य प्रकाश का पुंज का शरीर है। दूसरा अंतर ये है, इस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में तीन बातों की संपन्नता होती है, ईश्वरीय नशे की संपन्नता, ईश्वरीय शक्तियों की संपन्नता और ईश्वरीय गुणों की संपन्नता। उन तीनों बातों की संपन्नता अपने में बढ़ाते चले, ईश्वरीय नशे की झलक भी हमारे चेहरे पर सदा छाई हुई रहे, ईश्वर की पालना में हम पल रहे हैं, साधारण पालना नहीं मिल रही है, तो ईश्वर के पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना, क्योंकि हम साधारण पालना नहीं, प्रभु की पालना में इतने वर्षों से चल रहे हैं, पल रहे हैं, उसका प्रमाण हमें दिखाना है। दिव्यता की शक्ति हमारे जीवन में सदा बढ़ती रहे, साधारण देह के बजाय आत्मा का दिव्य स्वरूप और दिव्य प्रकाश पुंज का स्वरिष्ठा स्वरूप दिन प्रतिदिन हमें अनुभव होता रहे। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति में बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज भी पहना हुआ होता है। मुझ फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी धारण किया है, ऐसा हमें उसमें अनुभव करना है। और दूसरी बात, निरंतर शिव बाबा के साथ मेरी बुद्धि रूपी तार जुटी हुई है, ऐसा भी अनुभव हमें करना है, क्योंकि फरिश्ते का हमेशा कनेक्शन और सुवासी परमात्मा के साथ, भगवान के साथ होता है। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति को हमें बार बार इमर्ज करना है। कई बार ऐसा कोई कड़ा संस्कार होता है, अपवित्रता का कहो या कोई भी इन्फेरिटी का कहो, उसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है। हमें दिल से कष्ट नहीं होना है, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को अपने सामने इमर्ज करना है और वो जो हमारा पुराना संस्कार है उसका पॉजिटिव संस्कार जो है, जो अपवित्रता का संस्कार है, तो फरिश्ता स्थिति में जो पवित्रता का संस्कार है उसको अपने में आह्वान करें, उसको इन्वोक करें, तो धीरे धीरे वो पुराना संस्कार हम परिवर्तन जल्दी कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने हमें बताई है, इसलिए पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए इस युक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये फरिश्ता स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें अपने कर्म क्षेत्र पर तीन प्रकार के प्रयोग बार बार करते रहना है। तीन शब्द सारे संगम पर कभी नहीं भूलना है, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। बाबा ने हम सभी बच्चों को योगी का वरदान दिया है, योगी बनकर जो भी बाबा हमें विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं उसका हम प्रयोग करते रहें और श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अनेकों के उपयोग में भी आते रहें, अनेकों को मदद भी हम करते रहें। तो इसलिए तीन प्रकार के प्रयोग आपको अपने कर्म क्षेत्र पर, जहां पर भी आप हैं, किचन में है, ऑफिस में है, दुकान में है, मकान में है, घर में, कहां पर भी है, तीन प्रकार के प्रयोग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी फरिश्ता स्थिति सदा निखरती जाएगी। पहला प्रयोग है मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने स्थूल शरीर रूपी ड्रेस धारण की है और स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूँ, चल रही हूँ, ऐसा प्रयोग आपको करना है। ये एक तरफ रखना है कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। फिर अपने स्मृति के स्विच को थोड़ा घुमा देना है, उसको श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा प्रयोग करना है मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है, लाइट की ड्रेस धारण कर ली है और लाइट की जमीन पर चल रहा हूं। आपकी फरिश्ता स्थिति बहुत निखरती जाएगी, देखने वाला आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। तीसरा प्रयोग करना है मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है, कॉटन का शरीर, रुई का शरीर धारण किया है और रुई के जमीन पर चल रहा हूं। बहुत हल्के फुल्के आप चलेंगे और आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। तो ये आंतरिक स्थिति हमें गहराई से बढ़ाते जाना है, क्योंकि ये सिद्धांत हैं। कोई अगर हमारे तरफ देखता है तो हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है उसका रिफ्लेक्शन उसके मानस पटल पर स्वतः ही होता है और उसकी अपनी आंतरिक स्थिति का साक्षात्कार उस व्यक्ति को होता है। 87 में हम मधुबन निवासी बाबा से मिल रहे थे, इसी हॉल में मिल रहे थे। बाबा ने कहा था कि मधुबन में आप बहुत साधारण काम करते हैं, यहाँ तो साधारण काम होते हैं, झाड़ू लगाना है, भोजन पकाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, जो भी करना है, तो कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति आपकी असाधारण हो। कोई आपको खिड़की से दरवाजे से देखे तो ऐसा अनुभव करे कि ये कोई महान फरिश्ते हैं, ये होनहार देवताएं हैं, ये देखो साधारण कर्म कर रहे हैं लेकिन इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, बहुत महान स्थिति है। ऐसा आपको प्रयोग करते जाना है, क्योंकि स्थिति तो हमें असाधारण अनुभव करना है, कर्म भले साधारण हो। ठीक है, यहां ये हॉल नहीं था, उस समय की बात है। ब्रह्मा बाबा एक दिन दोपहर को बनियन और निकर पहनकर इस पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे अकेले। पांडव वन के गेट से कोई व्यक्ति लोकल आया, बूढ़ा व्यक्ति था, वो सोचने लगा इस संस्था का मुखिया कौन है, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाता है, कोई उसको नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, ऐसा उसने देखा और वो यहां चलता चलता आया। और जैसे बाबा ने उसको देखा, बाबा की संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार उसको हुआ, वो बाबा के पैर पकड़ने लगा, ये व्यक्ति देखो कितना साधारण कर्म कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, लेकिन ये कोई दिव्य फरिश्ता है, अलौकिक फरिश्ता है। वो पानी पानी हो गया। कहने का मतलब है साधारण कर्म भले हमारा हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फरिश्ता स्थिति से हमें बहुत सेवा करनी होगी, लोगों को परमात्मा का परिचय नहीं है, वो अगर वो दुविधा में होते हैं, समस्याओं में फंसे रहते हैं, तो यही सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए, ऐसा वो सोचता है। तो आगे चलकर हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करने का चांस मिलने वाला है। इसलिए 2016 में बाबा ने कहा था, कुछ भी हो अपने फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि हर कल्प हमने ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति की है तभी हम देवता बने हैं। केवल उस संस्कारों को हमने इमर्ज करना है। इसमें हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति अनुभव करना। केवल फरिश्ता स्थिति नहीं, मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है, इसका जो लाइट रिफ्लेक्शन करने का परसेंटेज है वो धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाता है। समझ लो, अभ्यास आप करते हैं तो मुझ आत्मा ने जो दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है 40% लाइट फैल रही है, उसको और बढ़ाना है 50%, 60%, 100% लाइट का शरीर, 0% स्थूल देह का भान का शरीर, उसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति अनुभव करना। अपने देह के साथ भी रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते भगवान के साथ। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना ही है। और ये मधुबन, आप जो भी यहाँ बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि सारे विश्व के ग्लोब पर ये मधुबन सबसे पावरफुल स्थान है। इस स्थान पर जो भी अलौकिक अनुभव करने की चाहना आप रखते हैं वो चाहना पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस भूमि पर हर प्रकार से हमें सहयोग मिलता है। ये तपस्या भूमि की महिमा ही कुछ अलग है। इसलिए यहाँ रहकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आप पूरी मदद ले सकते हैं, और यहाँ जो आप अनुभव करते जाएंगे उसको अपने कर्म क्षेत्र पर दोहराते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो ये स्थिति आपकी परिपक्व होती जाएगी। हमने देखा विदेश में जहां तहां एंजल्स की यादगार है, कोई घर खाली नहीं है जहां फरिश्तों की यादगार नहीं है। भारत में परियों की और देवताओं की यादगार है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता के सल्वेशन आर्मी बनकर बहुत सेवा की है। इस कल्प में भी हमने करना है और बहुत दुआओं की कमाई करना है, लेकिन बाबा चाहते हैं समय के पहले मेरे बच्चों की स्थिति, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति निखर जाए। पर्दा जब खुलता है तो जब एक्टर तैयार होते हैं तब पर्दा खोलते हैं स्टेज पर लोगों को देखने के लिए, तो बाबा कहते हैं मैं अभी पर्दा खोलना चाहता हूं, आप अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार इस साकारी दुनिया वाले लोगों को कराओ, उसके द्वारा सेवा करो। तो हमें ये चांस बहुत मिलने वाला है, लेकिन वो चांस मिलने के पहले हमें ये साधन जुटाना ही है। साधना कैसे भी करनी पड़े, मैंने ये साधन जुटाना ही है, तभी हम ऐसी कमाई कर सकेंगे। अभी वाचा कर्मणा के द्वारा सेवा खूब कर रहे हैं, बाद में चलन और चेहरे द्वारा सेवा करनी होगी, बाद में फरिश्ता स्थिति के द्वारा सेवा करनी होगी, बाद में मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। तो ये स्टेप्स हैं, हमें इस स्टेप्स वाइज आगे बढ़ना है। तो अभी हम ऐसी सुंदर स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। करना चाहते भाई? बोलो आसाम निवासी, बोलो आसामी, जिनके पास आसामी बहुत है, खजाने बहुत है, ऐसे आसाम के रहने वाले बाबा के बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। दौड़ी तालियां क्या ठंडी ठंडी बजा, जोर से बजाओ ना। नाश्ता नहीं किया क्या अच्छी तरह से? तो नींद का नशा है थोड़ा, ऐसे बोलो भाई अनुभव करेंगे कि नहीं, बताइए जल्दी। हाँ जी, ब्राह्मण जीवन में सबसे धनी आत्माएं वो है जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है। कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन कितने अलौकिक अनुभव का धन मुज आत्मा के पास जमा है, आसामी हैं, खजाने हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो चले हम सभी अनुभव करें फरिश्ता स्थिति का, तो सब खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे और ऐसे थोड़ा सा धीरे धीरे झूमेंगे, बाएं पैर पर दाएं पर, बहुत धीरे धीरे, ऐसा लगे ही नहीं आप झूम रहे हैं, बाएं पैर पर दाएं पैर पर। सब म्यूजिक है ना, फिर ये फरिश्ते। ओम शांति, मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने, बोलना नहीं अनुभव करना है, मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने, बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने, बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्थिति की ड्रेस अपना ली है, धारण कर ली है। कितनी सुंदर यह ड्रेस है, मेरी हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां किरणें चारों ओर फैल रहे फरिश्ता स्वरूप। तीन बातों से संपन्न है, ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय नशे की झलक फलक मेरे चेहरे में, मेरे आंखों में अनुभव हो रही है। दूसरी बात, यह मेरा फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है, ईश्वरीय शक्तियों की किरणें चारों ओर मजात्मा से फैल रही है, फरिश्ते से फैल रही है। तीसरी बात, मेरा यह फरिश्ता स्वरूप दिव्य गुणों से संपन्न है। मेरा चेहरा दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा हुआ है। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मैंने धारण किया है। मेरी बुद्धि रूपितार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव पिता से जुटी हुई है। कितना प्यारा है यह मेरा फरिश्ता
सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं।
अभी अभी फरिश्ता इस हॉल से बाहर निकलकर विश्व के ग्रह पर हनुमान की तरह विमान की तरह उड़ान भर रहा हूं। बढ़ता ही जा रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से ज्ञान का प्रकाश और शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मेरे द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर पांचों खंडों की आत्माओं पर ज्ञान का प्रकाश और शक्तियों की सकाश पड़ रही है। मैं फरिश्ता एक खंड से दूसरे खंड के ऊपर उड़ता ही जा रहा हूं। पांचों खंडों पर भ्रमण करते करते अनेक आत्माओं को सकार देते देते पुनः इस हॉल में अपने स्थान पर आकर विराजमान हो चुका हूं। ओहो, मेरे दाहिने बाजू में फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, मेरा साथ बाबा के साथ में है। बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्थिति से मुझे सकाश मिल रही है, जिससे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बहुत सहजता से आ रही है। कितना सुंदर है यह फरिश्ता स्वरूप। मौज आत्मा के सभी रिश्ते केवल अर्शवासी भगवान के साथ ही है।
बहुत सुंदर आप सभी ने अनुभव किया फरिश्ता स्वरूप का। तो भ्राता जी ने तो आपको धन्यवाद किया और अब आपकी बारी है भ्राता जी को धन्यवाद करने की।